पाठ 38 अध्याय 25 जारी। आज हम लैव्य व्यवस्था अध्याय 25 का अध्ययन जारी रखेंगे। इस अध्याय में मौजूद कई सिद्धांतों में से एक है जिस पर हर विश्वासी को ध्यान देना चाहिए, मुक्ति और मोचन। तोरह में ही मुक्ति और मोचन के बारे में बुनियादी बातें और विवरण बताए गए हैं। इस पाठ के अंत में हम वास्तव में इन दो सिद्धांतों के बारे में कुछ बारीक विवरण में जाने वाले हैं और मेरा सुझाव है कि आप मानसिक रूप से भटकने की इच्छा का विरोध करें। मुझे संदेह है कि कोई भी आस्तिक यह तर्क देगा कि हमारे लिए मुक्ति ही सब कुछ है, लेकिन नया नियम अपने पाठकों से पूरी तरह से अपेक्षा करता है कि वे इन ईश्वर निर्धारित अध्यादेशों की बारीकियों को पहले से ही समझ लें, जो इजरायली समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पिछली बार हमने पद 18 और 19 में छोड़ा था, जिसमें हमें सिखाया गया था कि भूमि कनान, जिसे प्रभु अपने लोगों को सौंप देगा, केवल तभी उपजाऊ होगी जब वे उसमें होंगे। 1906 में मध्य पूर्व में बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले फ्रांसीसी लोगों ने जनगणना की और पवित्र भूमि की कुल जनसंख्या 60,000 से कम थी। इसमें बेडोइन रेगिस्तानी घुमक्कर, भूमध्य सागर के तट पर और कुछ गलील के तट पर मछुआरे और बिखरे हुए बकरी और भेड़ पालक, साथ ही मुट्ठी भर किसान शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब यहूदियों ने इस भूमि पर पुनः आबादी बसाना शुरू किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह प्रवास तीव्र गति से हुआ, तो इस भूमि पर पुनः उत्पादन होने लगा। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह बाइबल में पाए जाने वाले उन सिद्धांतों में से एक है जिन्हें बहुत ज्यादा अनदेखा किया गया है और इतिहास के पीछे के दृश्य से भी यह बात पूरी तरह से पुष्ट होती है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो जमीन अलग रखी है वह तभी समृद्ध होती है जब उस पर वैध रूप से पट्टे रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। जब वे मौजूद नहीं होते तो जमीन जल्दी ही अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट जाती है, मृत और अनुपयोगी। मैं रूपक या रूपक में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस वास्तविकता की तुलना अब्राहम के वादा किए गए बेटे इसहाक के चमत्कारी जन्म से करना चाहता हूं, जो अपने बेटे याकूब के रूप में इसराइल राष्ट्र के जन्म की ओर ले जाएगा। इसहाक एक ऐसे गर्भ सारा का से आया था जो तब तक मृत और बेकार था जब तक यहोवा ने घोषणा नहीं की कि यह उसके लिए अलग किए गए लोगों के राष्ट्र का स्रोत बन जाएगा। अपने लिए अलग किए गए लोगों को बनाने के समानांतर उसने अपने लिए अलग किए गए और अपने लोगों द्वारा आबाद किए जाने के लिए एक भूमि निर्धारित की। परमेश्वर कनान की भूमि को दुष्ट कनानियों से छीन लेगा और इसे इज़राइल को सौंप देगा। जब कनानियों द्वारा शासन किया गया तो यह आध्यात्मिक रूप से मृत स्थान था, भले ही यह अच्छे चरागाहों और उपजाऊ खेतों से भरा हुआ प्रतीत होता था। जब यहोवा ने इसे अपने लिए अलग किया और एक बार जब इसराइल ने कनान की भूमि में प्रवेश किया तो परमेश्वर ने घोषणा की कि उस क्षण से आगे यह भूमि केवल उसके लोगों के लिए अपने फल देगी। जब वे वहां नहीं होंगे तो यह एक मृत और बेकार जगह होगी, जब वे वहां होंगे तो यह महत्वपूर्ण और उत्पादक होगा। दुख की बात है कि अब हम इस सिद्धांत के नकारात्मक पक्ष पर काम करते हुए प्रत्यक्षदर्शी हैं। गौर करें कि गाजा में उस दिन से क्या हुआ है जब से इसे 2 साल से थोड़ा अधिक समय पहले फिलिस्तीनियों को सौंप दिया गया था, जो इसराइल के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादन क्षेत्र था। वह अब एक ऐसा स्थान है जो अपनी स्वयं की आबादी का समर्थन भी नहीं कर सकता है। 1967 में इसराइल द्वारा गाजा को वापस जीतने से पहले यह एक उजार, लगभग पूरी तरह से निर्जन क्षेत्र था। एक बार जब यहूदी बसने लगे तो खेती शुरू हुई और रेगिस्तान खेल उठा। 15 अगस्त 2005 को जब यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को जमीन दी, तब तक गाजा के यहूदी खेत इसराइल में उगाई जाने वाली सभी उपज का एक तिहाई हिस्सा प्रदान करते थे। यह स्थान फिर से बंजर भूमि बनने के रास्ते पर है। मुझे परवाह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र क्या करने की कोशिश करता है या अमेरिका सहायता में क्या करने की कोशिश करता है। 15 अगस्त 2005 को गाजा अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस लौटना शुरू हो गया, जिसमें मृत्यु और बेकारपन था। यह मेरी ओर से कोई बेतुकी भविष्यवाणी नहीं है, यह पहले ही हो चुका है।
क्योंकि ये बस इसराइल के लिए अलग रखी गई भूमि का संचालन करने का तरीका है, क्योंकि ईश्वर ने इसे ऐसा घोषित किया है। ये एक अलौकिक चीज है और इसलिए इसे मनुष्य द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। आइए हम लेव्य व्यवस्था 25 के एक भाग को पुनः पढ़ें। लेव्य व्यवस्था 25 का 20 से 34 को पुनः पढ़ें।
पद 20 में, जहां विषय भूमि के लिए सप्त वर्ष का विश्राम है, हमें एक बहुत ही उचित अलंकारिक प्रश्न मिलता है, जिसे कोई भी विचारशील इसराइली परमेश्वर के इस अध्यादेश के बारे में बताए जाने पर पूछ सकता था। हम सातवें वर्ष में क्या खाएंगे यदि हम न तो बोएंगे और न ही अपनी फसल इकट्ठा करेंगे? और यहोवा का उत्तर है, मैं छठे वर्ष में तुम्हारे लिए अपना आशीर्वाद नियुक्त करूंगा ताकि यह 3 वर्षों के लिए पर्याप्त फसल पैदा करे। यहां आम तौर पर नियुक्ति के रूप में अनुवादित शब्द इब्रानी में झेपनी है। ये अपने साथ कुछ आदेश दिए जाने और कुछ भेजे जाने का दोहरा अर्थ रखता है। परमेश्वर प्रकृति को अपनी उदारता छोड़ने का आदेश दे रहा है और उस उदारता को इसराइल के मार्ग पर भेज रहा है। इस मामले में प्रकृति के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसराइल के पास है। वे सप्त के वर्षों और जयंती के परमेश्वर के आदेशों का पालन कर सकते हैं और इस उदारता को प्राप्त कर सकते हैं, या वे इसे अनदेखा कर सकते हैं और उदारता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से इस कानून का पालन करने से इनकार करने का अर्थ यह भी है कि इसराइल वाचा को तौर रहा है और वाचा को तौरने का परिणाम परमेश्वर का श्राप है।
निम्नलिखित आयतों में हमें भूमि स्वामित्व और संपत्ति के मोचन के बारे में कुछ और विवरण मिलते हैं, जैसा कि इसराइली समाज में प्रचलित है। हमें यह समझना चाहिए कि भूमि की स्थायी बिक्री निषिद्ध है। वास्तव में इब्रानी लोग चाहकर भी भूमि नहीं बेच सकते, क्योंकि वे इसके मालिक नहीं हैं, यहोवा के पास है। इसके अलावा यह इस बात की ओर इशारा करता है कि एक इब्रानी जो दूसरे इब्रानी से भूमि प्राप्त करता है, वह भूमि नहीं खरीद रहा है, वह केवल 50 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भूमि पट्टा ले रहा है। स्थायी भूमि हस्तांतरण के विरुद्ध यह निषेध वास्तव में विक्रेता के साथ साथ खरीदार पर भी लक्षित है। विक्रेता को कभी भी ऐसा सौदा नहीं करना चाहिए जो भूमि के स्वामित्व को हस्तांतरित करने का दावा करता हो, और खरीदार को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने स्वयं भूमि खरीदी है। खरीदार, चाहे कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, भूमि का केवल एक उपयोग करता है, मालिक नहीं। और यह स्थिति भाई अगले जयंती वर्ष तक कुछ समय के लिए ही रहती है। पद 23 में, जहां परमेश्वर निर्देश देते हैं कि भूमि को पुनः प्राप्त करने से परे बेचा नहीं जाना चाहिए, आपकी बाइबल में हमेशा के लिए लिखा हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि हमने चर्चा की है, उस पद का अंतिम भाग बताता है कि ऐसा क्यों है। भूमि आपकी नहीं है, यह मेरी है, परमेश्वर कहते हैं। तुम इसराइली बस मेरे साथ घूमने वाले लोग हो। ध्यान रखें कि जब बाइबल के कानून भूमि के संबंध में बेचना या बेचा शब्द का उपयोग करते हैं, तो यह केवल एक अलंकार है, यह केवल बोलने का एक सामान्य तरीका है। इसके बजाय कानूनी तौर पर तोरह के दृष्टिकोण से यह आम तौर पर एक लीज होल्ड को स्थानांतरित करने का उल्लेख करता है। भूमि को पुनः प्राप्ति से परे न बेचने का अर्थ यह है कि भूमि को छुराने, पुनः प्राप्त करने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसका पालन खरीदार और विक्रेता दोनों को करना चाहिए, यह वैकल्पिक नहीं है। इसीलिए जब हम इसराइल के लिए अलग रखी गई भूमि के बारे में किसी भी भूमि लेन देन के बारे में पढ़ते हैं, तो मोचन का अधिकार स्वतः ही शामिल हो जाता है। यह एक दिया हुआ अधिकार है।
अब जुबली कानून के साथ मोचन को भ्रमित न करें। मोचन में पैसा शामिल है और इसमें एक तीसरा पक्ष छुराने वाला शामिल है, जो भूमि को छुराने की कीमत चुकाता है। तीसरा पक्ष छुराने वाला लगभग हमेशा एक परिवार का सदस्य होता है, और यह छुराने वाला परिवार का सदस्य भूमि को छुराने के लिए बाध्य है। यह उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा भूमि का वर्तमान धारक भी उचित मोचन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। दूसरे शब्दों में,
यदि कोई उचित और कानूनी तीसरा पक्ष छुड़ाने वाला भूमि के वर्तमान धारक से मोचन मूल्य के रूप में उचित और कानूनी राशि के साथ संपर्क करता है, तो वर्तमान मालिक कानून के अनुसार संपत्ति के मोचन की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह नहीं सोचा गया था कि एक मूल भूमि धारक केवल व्यावसायिक कारणों जैसे लाभ के लिए किराए की अचल संपत्ति का स्वामित्व के लिए पट्टे को बेचेगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा जो अनिवार्य रूप से मालिक को भूमि को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए पद 25 विभिन्न स्थितियों के उदाहरणों की एक श्रृंखला शुरू करता है जिसके द्वारा मूल धारक को भूमि खोनी पड़ती है, और पहला उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जो बुरे समय से गुजर रहा है। वह बुरे समय से गुजर रहा है और आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। अब यह या तो हो सकता है कि उसे किसी अप्रत्याशित और गंभीर कारण से पैसे की जरूरत हो, या फिर ज्यादातर मामलों में वह किसी को दिया गया कर्ज नहीं चुका सकता और इसीलिए कर्जदार उस जमीन को चुकाने के लिए ले लेता है। इसीलिए एक करीबी रिश्तेदार, आमतौर पर सबसे करीबी रिश्तेदार, जिसके पास जरूरी पैसे जुटाने की क्षमता और साधन है, तोरह के अनुसार उस परिवार के सदस्य के नाम पर जमीन छुड़ाने के लिए बाध्य है जिसने जमीन खो दी है, और स्पष्ट रूप से छुड़ाने वाले परिवार के सदस्य को जमीन रखने का अधिकार नहीं मिलता है। वह तब तक इसे अपने पास नहीं रखता जब तक कि गरीबी से पीड़ित परिवार का सदस्य किसी तरह से छुड़ाने वाले को वापस भुगतान करने के लिए आवश्यक धन जुटाने में सक्षम नहीं हो जाता। छुड़ाने वाला कीमत चुकाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को जमीन वापस पाने का लाभ मिलता है। पद 26 दूसरा उदाहरण है। यहां स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन खो दी है, उसके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए जमीन छुड़ा सके। या तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, या उसका कोई भी रिश्तेदार पैसे देने में सक्षम नहीं है। हालांकि अगर जमीन खोने के बाद वह व्यक्ति आर्थिक रूप से ठीक हो जाता है और छुटकारे की कीमत को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन जुटा लेता है, तो नए मालिक को परमेश्वर के कानून के अनुसार उसे वापस बेचना होगा। इसके अलावा छुटकारे की कीमत निर्धारित करने की विधि यह है कि नए मालिक को उस कीमत से घटाना होगा जो उसने उस समय के लिए चुकाई थी जब तक उसने जमीन का उपयोग किया था। उदाहरण, एक आदमी पर $500 का कर्ज है और वह इसे चुका नहीं सकता। कर्जदार ने उस आदमी की जमीन जब्त कर ली है। एक उचित गणना से पता चलता है कि उस जमीन पर उगाई जा सकने वाली फसलें हर साल $100 का मूल्य होता है। 3 साल बाद जिस व्यक्ति ने जमीन खो दी है, वह आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में है और इस तरह उसके पास अपनी जमीन वापस पाने के साधन है। क्योंकि मूल ऋण $500 था और चूंकि नए मालिक को जमीन रखने से लाभ के रूप में 3 साल की फसलें मिली जो कि $300 के बराबर लाभ है, तो मोचन मूल्य केवल $200 है। $500 के ऋण में से जमीन पर उगाई गई फसलों से $300 घटाने पर चुकाने के लिए केवल $200 बचते हैं। अब यह हमेशा इतना आसान नहीं था, लेकिन मूल रूप से यही तरीका था जिससे इसे काम करना था।
इसके बाद जुबली वर्ष के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अपनी जमीन खोने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी जमीन छुड़ाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता, या अगर उसके पास जमीन छुड़ाने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसे इसे वापस पाने के लिए जुबली वर्ष तक इंतजार करना होगा। जुबली वर्ष में जमीन के नए धारक को इसे उस व्यक्ति को वापस करना होगा जिसने इसे बिल्कुल भी खर्च किए बिना खो दिया है। जुबली वर्ष में संपत्ति की वापसी का प्रभाव पूरी तरह से रिहाई है। किसी कीमत पर संपत्ति को वापस खरीदने का प्रभाव मोचन है। रिहाई और मोचन हालांकि संबंधित हैं, 2 अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
पद 29 में हमें तीसरा उदाहरण मिलता है कि कैसे संपत्ति का एक टुकड़ा मूल मालिक से हस्तांतरित किया जा सकता है। क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, लेकिन उसके पास एक दीवार वाले शहर के अंदर एक घर है? शायद वह एक व्यापारी या शिल्पकार है, किसान या चरवाहा नहीं। इस मामले में कानून यह है कि यदि वह अपने मकान का स्वामित्व किसी अन्य को हस्तांतरित करता है, चाहे किसी कारणवश उसे बेचकर या ऋणग्रस्तता के कारण उसे खोकर, तो उसके पास उसे छुड़ाने के लिए केवल एक वर्ष का समय है। एक साल के बाद नए मालिकों का कोई दायित्व नहीं रह जाता। घर हमेशा के लिए मूल मालिक के हाथों से चला जाता है और जुबली वर्ष के आगमन पर भी घर मूल मालिक को वापस नहीं मिलता। इसलिए जब रिहाई और मोचन की बात आती है तो हम आवास स्थान और भूमि के उपचार के बीच एक बहुत बड़ा अंतर देखते हैं। पद 31 में हम देखते हैं कि जो घर दीवार वाले शहरों के अंदर नहीं है बल्कि बाहरी गांवों में स्थित हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि वे जमीन हो। दीवार वाले शहरों के बाहर के घरों पर भी वही नियम लागू होते हैं जो जमीन पर लागू होते हैं। आयर अगर कोई दीवार वाले शहर के बाहर स्थित घर खो देता है तो उसे छुड़ाने की अवधि कभी समाप्त नहीं होती। इसके अलावा गांव के घर को जुबली के साल में भूतपूर्व मालिक को वापस करना होगा। विचार यह है कि हमेशा एक व्यक्ति के पास गांव में घर होता है, उसके साथ जमीन का एक टुकड़ा भी होता है और आमतौर पर भले ही वह व्यक्ति शिल्पकार हो, जमीन पर कुछ मात्रा में भोजन उगाया जाता था। अब ऐसा हमेशा नहीं होता था लेकिन अक्सर ऐसा होता था। अब याद करें कि जब इसराइली मिस्र छोड़ने के बाद आखिरकार कनान की भूमि में प्रवेश कर गए, जो कि लैव्य व्यवस्था में इस बिंदु पर अभी तक नहीं हुआ है, तो प्रत्येक गोत्र को भूमि आवंटन किया गया था। लेकिन एक इसराइली गोत्र थी जिसे अपना कोई क्षेत्र नहीं मिला, लैव्य व्यवस्था की गोत्र, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के विशेष सेवक, उनके पुजारी, परमेश्वर के स्वर्गीय सेवकों, स्वर्गदूतों के किसी तरह से सांसारिक समकक्ष होने के लिए इसराइल से अलग रखा गया था। इसलिए लेवियों को 12 गोत्रों के प्रत्येक क्षेत्र में स्थित शहर प्राप्त करने थे। इसके अलावा प्रत्येक शहर से जुड़ी थोड़ी सी भूमि भी शामिल थी। अब लेवियों के रहने वाले 48 शहरों में से कुछ उनके अपने थे, जाहिर तौर पर दीवार वाले शहर थे, जबकि अन्य सभी इसराइली दीवार वाले शहरों में अपने घरों को हमेशा के लिए खो देते। अगर उन्हें एक वर्ष के भीतर छुड़ाया नहीं जाता तो लेवियों के घरों पर ऐसी कोई सीमा नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा उनके दीवार वाले शहर के घर को उन्हें जुबली के वर्ष में वापस करना था।
पद 34 हमें कुछ ऐसे प्रावधान देता है जिससे अधिकांश गृहस्वामी परिचित हैं। यहां यह कहा गया है कि एक लैव्य व्यवस्था कभी भी अपनी जमीन नहीं खो सकता, यहां तक कि ऋणग्रस्तता के कारण भी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी लैव्य व्यवस्था को पैसे उधार देता है वह पूरा जोखिम खुद पर ले रहा है, क्योंकि वह उस लैव्य व्यवस्था की जमीन को जब्त नहीं कर सकता। इस प्रकार हमारे पास होमस्टेडिंग का सिद्धांत है। होमस्टेडिंग आम तौर पर किसी व्यक्ति को अपना घर खोने से बचाता है, सिवाय घर के बंधक पर चूक के, किसी अन्य ऋण या लापरवाही के कृत्य या जो भी हो से उत्पन्न निर्णय को संतुष्ट करने के लिए होमस्टेडेड घर आपसे नहीं लिया जा सकता। दिवालियापन के कारण इसे आपसे नहीं लिया जा सकता, बशर्ते आप या तो अपने बंधक भुगतान को जारी रखें या घर का पूर्ण स्वामित्व रखें। परमेश्वर के सेवक होने के नाते लेवियों को अपनी भूमि की विरासत कभी नहीं खोनी थी। लैव्य व्यवस्था 25-35 को अंत तक पढ़ें।
अब तक हमने अचल संपत्ति के मोचन और जयंती वर्ष के विमोचन पर अधिक चर्चा की है। ये खंड पाठ्यक्रम बदलता है और मानव संपत्ति लोगों से संबंधित है। जो लोग बंधुआ या दास बन गए हैं और यह हमें वित्तीय कठिनाइयों के कुछ चरणों से गुजरता है, जिनमें बाइबल युग में लोगों ने खुद को पाया जिसके कारण वे दास या बंधुआ बन गए। जो 35वें पद से शुरू करते हुए स्थिति यह है कि एक व्यक्ति जिसे रिश्तेदार के रूप में वर्णित किया गया है वह गरीब हो गया है और किसी का कर्जदार है। इसके अलावा यह विशेष रिश्तेदार कुछ हद तक निवासी विदेशी जैसा है, इस अर्थ में कि क्योंकि निवासी विदेशी भूमि नहीं रख सकते हैं, वे ऐसे श्रमिक हैं जो मजदूरी के लिए काम करते हैं। तो यहां हमारे पास एक किसान इब्रानी का मामला है जो केवल मजदूरी के लिए काम करता है। वह एक कर्मचारी है जिसके पास काम करने और भोजन उगाने के लिए कोई जमीन नहीं है।
इस उदाहरण में रिश्तेदार के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द इब्रानी में आंख है, जिसका शाब्दिक अर्थ भाई है। लेकिन आंख भी एक आम शब्द है जो देशवासी को इंगित करता है। इसलिए विचार यह है कि जबकि यह गरीब व्यक्ति एक करीबी रिश्तेदार हो सकता है, वह बस एक इजरायली भी हो सकता है और सभी इजरायली एक दूसरे के भाई हैं। इसलिए यहां निर्देश यह है कि एक इजरायली को दूसरे इजरायली से पैसे या प्रावधानों पर ब्याज नहीं लेना चाहिए, कम से कम तब जब उधारकर्ता को उधार लेना पड़े, क्योंकि वह गरीब है और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि 39वें पद में गरीब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। उसने बिना ब्याज के पैसे उधार लिए हैं लेकिन उसे वापस नहीं चुका पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि यह गरीब व्यक्ति अब एक गिरमिटिया नौकर बन गया है, यानी उसे उस व्यक्ति को सौंप दिया गया है जिसने उसे पैसे उधार दिए थे, जब तक कि वह अपने श्रम के माध्यम से कर्ज का भुगतान नहीं कर देता। आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि गरीब व्यक्ति और उसका परिवार उस व्यक्ति की संपत्ति पर रहता था जिसने उसे पैसे उधार दिए थे। विचार यह है कि यह ऋणी व्यक्ति गुलाम नहीं बनता, उसे खरीदा नहीं गया है और इसलिए वह संपत्ति है, बल्कि वह एक कर्मचारी की तरह है, लेकिन वह कर्मचारी बंधा हुआ है। उसे ऋणदाता और केवल ऋणग्रस्तता के लिए काम करना चाहिए। हालांकि वह व्यक्ति अपने स्वामी के प्रति सबसे लंबे समय तक ऋणी और बंधुआ रह सकता है, जब तक कि जुबली का वर्ष नहीं आ जाता, जिस समय गिरमिटिया नौकर को रिहा कर दिया जाना चाहिए और उसके शेष ऋण को माफ कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वामी पुरुष को जाने नहीं दे सकता, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों को रख सकता है। पूरे परिवार को हमेशा के लिए रिहा कर दिया जाना चाहिए।
इस कानून के पीछे का सिद्धांत पद 42 में बताया गया है, सभी इजरायली परमेश्वर के हैं, उसने उन्हें छुराया। जब उसने उन्हें मिस्र के हाथ से छुराया तो उसने उनकी गुलामी से मुक्ति खरीदी। इसलिए एक और अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि कोई भी छुराया हुआ व्यक्ति किसी दूसरे का गुलाम नहीं हो सकता और हर इजरायली को छुराया गया। इस कानून का प्रभाव यह है कि कोई भी इजरायली इब्रानी गुलामों का मालिक नहीं हो सकता। समझे, एक दास दास नहीं है, एक दास अपने स्वामी की संपत्ति नहीं है, वह एक विशेष कर्मचारी की तरह है।
ऐसा कहने के बाद पद 44 से 46 यह स्पष्ट करते हैं कि इब्रानियों के पास दास हो सकते हैं, मानव संपत्ति, बस यह है कि ये दास विदेशी गैर इसराइली दूसरे देशों के लोग होने चाहिए। इसलिए कानून के अनुसार एक इब्रानी किसी विदेशी को दास के रूप में खरीद सकता है, और अगर उस विदेशी के बच्चे हैं तो वे बच्चे भी दास हैं। इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि दास वास्तव में संपत्ति हैं, जैसे जमीन या फर्नीचर, दासों को एक इब्रानी परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जा सकता है। कानून में किसी विदेशी दास को छुराने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वे उस स्थिति में फंस गए हैं बिना किसी उम्मीद के। मैं इस सिद्धांत पर जोर देना चाहता हूं ताकि यह बहुत स्पष्ट हो, केवल वे लोग ही छुराए जा सकते थे और इस प्रकार अपने ऋणों से मुक्त हो सकते थे जो परमेश्वर द्वारा इज़राइल के साथ की गई वाचा के अधीन थे। विदेशी जो इज़राइल का हिस्सा बनना चाहते थे, उन्हें इज़राइल का हिस्सा बनने की अनुमति दी गई और इस प्रकार उन्हें वाचा के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया। विदेशी जो इज़राइल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वे वाचा के प्रावधानों से बाहर थे। यही सिद्धांत मोक्ष पर भी लागू होता है। हम इज़राइल के साथ की गई वाचा के प्रावधानों के अंतर्गत बचाए गए हैं और उस प्रावधान का एक हिस्सा एक बचाने वाला मसीहा है। इस प्रकार रोमियो 11 में हमारे पास सेंट संत पौलुस का निष्कर्ष है कि जो विदेशी बचना चाहते हैं, उन्हें इज़राइल की वाचाओं में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन वाचाओं के भीतर है जहां मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर द्वारा एकमात्र प्रावधान मौजूद है।
पद 47 एक और स्थिति को दर्शाता है। इज़राइल में रहने वाला एक संपन्न विदेशी एक इब्रानी को पैसे उधार देता है और इब्रानी इसे वापस नहीं कर सकता। कानून के अनुसार वह इब्रानी विदेशी का दास बन जाता है। हालांकि जबकि एक इब्रानी एक विदेशी दास का मालिक हो सकता है, इज़राइल में रहने वाला एक विदेशी एक इब्रानी को दास के रूप में नहीं रख सकता। इसके अलावा इब्रानी ऋणी के परिवार के सदस्य को उसे विदेशी के दास की स्थिति से छुड़ाना होता है, या वैकल्पिक रूप से यदि किसी तरह यह दास अपने आप समृद्ध हो जाता है तो उसे खुद को छुड़ाने की अनुमति है। अध्याय का शेष भाग यह दर्शाता है कि दास के लिए मोचन मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है, तथा हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह मूलतः उसी प्रकार कार्य करता है जैसे कि किसी भूमि के टुकड़े को मोचन किया जा रहा हो। मैं इस बिंदु पर यह कहना चाहता हूं कि जहां एक रिश्तेदार का किसी व्यक्ति की भूमि को उसके लिए छुड़ाना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था, वहीं एक रिश्तेदार का अपने ही परिवार के सदस्य को किसी विदेशी की दासता से छुड़ाना एक असाधारण उच्च कर्तव्य था। परमेश्वर यह स्पष्ट करता है कि सिद्धांत रूप में किसी भी इसराइली को परमेश्वर के अलावा किसी और का सेवक या दास नहीं बनना चाहिए, और वह भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। लेकिन एक इसराइली का किसी गैर इसराइली का सेवक या दास होना घृणित माना जाता है, और उसके परिवार का यह कर्तव्य है कि यदि आवश्यक हो तो उस गरीब इब्रानी को उसकी स्थिति से निकालने के लिए महान व्यक्तिगत बलिदान दिया जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। जैसा कि आपने पिछले 3 पाठों में देखा है, यह लैव्य व्यवस्था है जहां हम पाते हैं जुबली के नियमों में एक तरह से अंतर्निहित और उलझा हुआ रूप से रिश्तेदार उद्धारक की अवधारणा और कर्तव्यों का विवरण हमारे लिए दिया गया है। और मुझे संदेह है कि आप में से कई लोगों को तुरंत याद आ गया होगा कि यीशु को अक्सर हमारे रिश्तेदार उद्धारकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है। हम सभी ने इस बारे में कई उपदेश सुने हैं। स्वाभाविक रूप से वह इस चक्कर का कारण है।
लैव्य व्यवस्था 25 में हमें बताया गया है कि एक रिश्तेदार उद्धारकर्ता का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य या परिवार के किसी व्यक्ति की जमीन को किसी और के हाथों खो जाने से बचाना है। यानी परिवार में कोई व्यक्ति आमतौर पर कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी कुछ या सारी जमीन खो देता है या बंधुआ बन जाता है। जमीन खोने का तरीका यह है कि जमीन को बेच दिया जाता है, या किसी ऋण को चुकाने के लिए उसका आदान प्रदान किया जाता है, या वह व्यक्ति जिसके पास बेचने के लिए कोई जमीन नहीं है वह ऋण चुकाने के लिए ऋणग्रस्तता का बंधुआ बन जाता है।
लेकिन कानून यह था कि अगर ऐसी स्थिति होती तो उस भूमि या व्यक्ति को छुड़ाने का अधिकार स्वतः ही होता, और भूमि के मामले में या तो वह व्यक्ति जो मूल रूप से भूमि का मालिक था वह छुड़ाने की कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त धन जुटा सकता था और उसे वापस ले सकता था, या कोई पारिवारिक सदस्य उसके लिए आरण चुका सकता था। ऐसे व्यक्ति के मामले में जो बंधुआ बन गया, अगर वह किसी तरह खुद पैसे जुटा पाता तो वह अपनी स्वतंत्रता खरीद सकता था, या अधिक बार कोई पारिवारिक सदस्य उसकी ओर से छुराने की कीमत चुकाता था। वास्तव में यह पारिवारिक रिश्तेदार का कर्तव्य था कि वह उसकी ओर से भूमि छुराए या उस व्यक्ति की स्वतंत्रता खरीदे अगर पारिवारिक रिश्तेदार के पास ऐसा करने के लिए धन हो। इसलिए सामान्य नियम यह था कि सबसे करीबी पारिवारिक सदस्य छुराने के लिए सबसे पहले कतार में होता था। अगर उसके पास साधन नहीं थे तो यह कर्तव्य अगले निकटतम पारिवारिक सदस्य का था, और अगर उसके पास साधन नहीं थे तो अगला निकटतम पारिवारिक सदस्य जिम्मेदार था, और इसी तरह। इस व्यवस्था का एक मुख्य सिद्धांत यह था कि रिश्तेदार छुराने वाले को अपने परिवार के सदस्य के लिए छुराई गई जमीन रखने का अधिकार नहीं था, और न ही अगर वह परिवार का सदस्य दास बन गया था तो वह परिवार का सदस्य अब कानूनी तौर पर रिश्तेदार छुराने वाले का दास बन गया। ऐसा कहा जाता है कि कृतज्ञता के कारण कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के अधिकार में रहने की पेशकश कर सकता था जिसने उसे छुराया था। इसलिए रिश्तेदार छुराने वाले ने उस ऋण की कीमत चुकाई जो बकाया था, लेकिन परिवार का वह सदस्य जिसने जमीन या अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी थी उसे लाभ मिला। रिश्तेदार छुराने वाले को अपनी दयालुता और कर्तव्य के कार्य से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला।
यह आत्म बलिदान का एक कानूनी रूप से आवश्यक कार्य था।
हालांकि हमने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन यह एक रिश्तेदार उद्धारक होने का एकमात्र पहलू नहीं था। रिश्तेदार उद्धारक का एक और उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की गलत तरीके से हुई मौत का बदला लेने वाले के रूप में कार्य करना था। यानी अगर परिवार में किसी की दूसरे के हाथों मौत हो जाती है, चाहे वह आकस्मिक या पूर्व नियोजित हत्या हो या युद्ध की गर्मी में या जो भी हो, तो परिवार का कोई करीबी सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश करके उसकी जान लेने के लिए बाध्य था। वास्तव में इसराइल में उन लैव्य व्यवस्था शहरों का प्राथमिक उद्देश्य, जिन्हें शरण स्थल या शरण स्थल के रूप में नामित किया गया था, बदला लेने पर आमादा किसी रिश्तेदार छुराने वाले से सुरक्षित आश्रय प्रदान करना था। जबकि हम शरण स्थल के शहरों की सभी बारीकियों में नहीं जा रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक पूर्व नियोजित हत्यारा आमतौर पर शरण स्थल शहर में भागकर सुरक्षित नहीं हो जाता था। प्रत्येक शहर में बुजुर्गों का एक बोर्ड होता था जो यह निर्धारित करता था कि भागने वाले व्यक्ति को उनके शरण स्थल में जाने दिया जाए या नहीं। आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण नहीं दी जाती थी जिसने कोई आपराधिक कृत्य किया हो, जिसके कारण जान का नुकसान हुआ हो। यह अधिक सामान्य था कि यह अनजाने में किए गए अपराध के लिए होता था, या शायद दो आदमी लड़ रहे थे और युद्ध की गर्मी में एक ने दूसरे को मार डाला। इसलिए अभयारण्य का मतलब अपराध या निर्दोषता से नहीं था, बल्कि यह किसी को रिश्तेदार उद्धारक के पारंपरिक प्रतिशोध से बचाने के बारे में था।
एक रिश्तेदार मुक्तिदाता का एक और पहलू भी है जिसके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। यह था कि एक पुरुष परिवार के सदस्य को एक महिला परिवार के सदस्य से विवाह करना था जिसने अपने पति को खो दिया था। अगर उसने अभी तक अपने अब मृत पति के उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटे को जन्म नहीं दिया था, विचार यह था कि रिश्तेदार मुक्तिदाता द्वारा उससे विवाह करने से वह अंततः गर्भवती हो जाएगी, एक बेटा पैदा करेगी और बेटा उसके मृत पति के नाम पर आगे बढ़ेगा और इसलिए उसके पति का नाम जारी रहेगा और उसकी वंशावली समाप्त नहीं होगी।
पहले प्रकार के स्वजन मुक्तिदाता, वह प्रकार जो परिवार के किसी सदस्य की भूमि वापस खरीदता है, उसे इब्रानी में घोएल कहा जाता है। दूसरे प्रकार के स्वजन मुक्तिदाता, जो परिवार के किसी सदस्य की मौत का बदला लेते हैं, उन्हें इब्रानी में घोएल हादाम कहा जाता है, या अधिक शाब्दिक रूप से कहें तो रक्त प्रतिशोधी कहा जाता है। तीसरे प्रकार के नातेदार मुक्तिदाता, वह प्रकार जो पुत्रहीन विधवा से विवाह करता है ताकि वह पुत्र उत्पन्न कर सके और मृतक पिता की वंशावली को आगे बढ़ा सके, उसे भी घोएल कहा जाता है। अब इससे पहले कि हम इनमें से कुछ बिंदुओं को जोड़ना शुरू करें, आइए हम किन्नर शब्द का अर्थ भी समझ लें। कई इब्रानी शब्द हैं जिनका अंग्रेजी शब्द किन्समैन में अनुवाद किया गया है, लेकिन वे सभी कुछ अलग अर्थ दर्शाते हैं। किन्समैन के रूप में अनुवादित सबसे आम इब्रानी शब्द आंख है, जिसका शाब्दिक अर्थ भाई है। भाई का मतलब पुरुष भाई बहन हो सकता है, या इसका मतलब करीबी रिश्तेदार हो सकता है, या कभी कभी इसका इस्तेमाल भाई जैसे रिश्ते को इंगित करने के लिए भी किया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद खून से संबंधित न हो, लेकिन जिसके साथ आप बहुत करीब हैं। आमतौर पर जब नाक का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब बहुत करीबी रिश्तेदार होता है।
रिश्तेदार के लिए एक और इब्रानी शब्द है करोब। शाब्दिक रूप से करोब का अर्थ है निकट, लेकिन परिवार के संदर्भ में इसका अर्थ है निकटतम रिश्तेदार। रिश्तेदार के लिए एक और आम इब्रानी शब्द है मोड़ा, और इसका सबसे आम अर्थ है एक अंतरंग मित्र जो भाई जितना ही करीबी होता है।
बाइबल के संदर्भ में सब कुछ है, इसलिए रिश्तेदार का मतलब आपके नजदीकी परिवार के सदस्य से लेकर आपके भाई की तरह, आपके विस्तारित परिवार के सदस्य चचेरे भाई की तरह, या बस आपके कबीले के सदस्य तक कुछ भी हो सकता है। अपने व्यापक अर्थ में यह इसराइल राष्ट्र के किसी भी सदस्य को भी इंगित कर सकता है, लेकिन यह उसे आगे नहीं बढ़ता। शारीरिक और राष्ट्रीय अर्थ से किसी भी विदेशी या परदेशी निवासी को इसराइली का रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, भले ही किसी इजरायली का कोई बहुत करीबी दोस्त मिस्री या कनानी हो, उस दोस्त को किसी भी कानूनी उद्देश्य के लिए रिश्तेदार नहीं माना जाएगा। इसलिए इनमें से किसी भी मामले में जो मैंने आपको मोचन से संबंधित बताया है, आम तौर पर रिश्तेदार शब्द से संकेत मिलता है कि रक्त संबंध था जिसमें रक्त इसराइली रक्त था। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन रुकिए, एक विदेशी पूर्ण रूप से इसराइली बन सकता है? हाँ, यह सच है, लेकिन एक बार जब कोई विदेशी इसराइली बन जाता है तो वह अब विदेशी नहीं रह जाता है। जब कोई विदेशी इसराइल के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर देता है तो सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए याकूब को भी उसका पिता माना जाता है। तो चलिए स्पष्ट हो जाए, बाइबल के अनुसार एक रिश्तेदार केवल अपने ही राष्ट्र या लोगों के बीच हो सकता है। इसलिए जब हम शास्त्रों में सगे संबंधियों और सगे संबंधी मुक्तिदाताओं के बारे में ये सारे नियम और अध्यादेश पाते हैं तो ये सिर्फ इसराइलियों के बीच के रिश्तों के बारे में है, विदेशियों को इससे बाहर रखा गया है।
अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि नए नियम में कितनी बार यीशु को हमारे छुड़ाने वाले रिश्तेदार के रूप में संदर्भित किया गया है? 2.97 कोई अनुमान, शून्य का प्रयास करें। उसे वास्तव में हमारा उद्धार या हमारा छुड़ाने वाला कहा जाता है, लेकिन पूरे नए नियम में उसे कहीं भी हमारा छुड़ाने वाला रिश्तेदार नहीं कहा गया है। क्या ये आपको थोड़ा परेशान करता है? अच्छा, क्योंकि अगर आपको अभी भी लगता है कि बाइबल ईसाइयों के लिए मत्ती की किताब से शुरू होती है और पुराना नियम पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि यीशु ने इसे क्रूस पर चढ़ाया, तो आपको एक समस्या है, क्योंकि नया नियम ने कभी भी उसे छुड़ाने वाले रिश्तेदार के रूप में लेबल नहीं किया है।
तो यह विचार या सिद्धांत कहां से आता है? यह विचार कि यीशु हमारे मसीहा, हमारे रिश्तेदार उद्धारक भी हैं, पुराने नियम से। पुराने नियम में रिश्तेदार उद्धारक के 33 संदर्भ हैं और उनमें से लगभग आधे भविष्य के मसीहा या यहोवा को संदर्भित करते हैं। उनमें से अधिकांश संदर्भ यशायाह में हैं। बेशक रिश्तेदार उद्धारक की परिभाषा और कर्तव्य पूरी तरह से लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 में निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। तो अगर व्यवस्था मर चुकी है और चली गई है, तो ऐसा क्यों है कि अधिकांश इंजील प्रचारक सबसे अडिग व्यवस्था को अनुग्रह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? लोग इस बात पर जोर देते हैं कि रिश्तेदार उद्धारक का लेव्य व्यवस्था कानून यीशु पर लागू होता है। जब हम रिश्तेदार उद्धारक के उद्देश्यों को समझना चाहते हैं और इसे अपने नए नियम के मसीहा पर लागू करना चाहते हैं, तो हम अपनी बाइबल को रूत की कथित रूप से अप्रचलित पुस्तक की ओर मोड़ना क्यों पसंद करते हैं?
जाहिर है, मैं थोड़ा व्यंग्यात्मक हो रहा हूं। हां, बेशक यीशु हमारा रिश्तेदार मुक्तिदाता है, लेकिन हम इसे केवल पुराने नियम के सिद्धांतों से ही जान सकते हैं।
तो आइए देखें कि तोरा अर्थात व्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर यीशु किस प्रकार हमारा स्वजन उद्धार करता है। यीशु के अपने शब्दों को सुनिए, लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न वर्ष का प्रचार करूं। ये कैसा लगता है? बेशक ये वही है जो हम लेव्य व्यवस्था में पढ़ रहे हैं। वह मुक्ति की बात करता है, जो लोग दलित हैं उन्हें मुक्त करता है और प्रभु के अनुकूल वर्ष की घोषणा करता है। प्रभु का अनुकूल वर्ष जुबली के लिए एक मुहावरा है। यीशु जुबली के सिद्धांतों और एक रिश्तेदार उद्धारक, एक गोयल के उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कम से कम आधे नया नियम में पुराने नियम के उद्धरण हैं और लूका में, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, उसमें यीशु ने यशायाह 61:1 को उद्धृत किया है। यशायाह 61:1, प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने दुखियों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे हुए मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं को छुटकारा और कैदियों को छुटकारा का प्रचार करूं। दो की यहोवा के प्रसन्न वर्ष का प्रचार करूं। स्वजन उद्धारक का यह पहलू जो मुक्ति दिलाता है और पद्दलितों को उद्धार देता है, वह है जिसके बारे में हम गैर यहूदी ईसाई सबसे ज्यादा सोचते हैं। हम बुराई और पाप के बंधन में थे, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हमारे पास एक रिश्तेदार छुड़ाने वाला हो। इसके अलावा हम विदेशी थे, इसराइल के बाहर और इसलिए उनकी वाचाओं से बाहर। इस प्रकार हमने लेव्य व्यवस्था 25 का 44 से 46 में देखा है कि विदेशी जो इसराइल के बाहर हैं हमेशा के लिए गुलाम हो सकते हैं, यहां तक कि उनके वंशज भी छुटकारा पाने की कोई उम्मीद नहीं रखते। मैं इसे फिर से दोहराता हूं क्योंकि यह सिद्धांत उद्धार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पापों के प्रायश्चित के लिए रक्त की आवश्यकता है विदेशियों जो इसराइल के बाहर हैं, उनके लिए छुटकारे का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हमने सीखा कि रिश्तेदार छुराने वाले के पास छुराने के लिए साधन होने चाहिए, उसे पूरी छुरौती कीमत चुकाने में सक्षम होना चाहिए, कोई छूट नहीं। एक अच्छा व्यक्ति छुराना चाह सकता है, वह अपने भाई को मुक्त करने के लिए छुरौती कीमत देना चाह सकता है, लेकिन अक्सर वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते। ऋणधारक, रिश्तेदार छुराने वालों से मैं तुम्हारा ऋणी हूं स्वीकार नहीं करते थे, वे चाहते थे कि कीमत पूरी तरह से चुकाई जाए। परमेश्वर भी मैं तुम्हारा ऋणी हूं स्वीकार नहीं करते। मानव जाति के लिए समस्या यह थी कि हमारे पाप के कारण परमेश्वर के प्रति हमारा ऋण मृत्यु था, हमारी मृत्यु। या तो हमने अपनी मृत्यु से अपना ऋण चुकाया या रिश्तेदार छुराने वाले को कीमत चुकानी पड़ी। रिश्तेदार छुराने वाला प्रतिस्थापन के पैटर्न का पालन करता है। प्रतिस्थापन का पैटर्न पशु बलि में प्रदर्शित होता है जो लेव्य व्यवस्था बलिदान प्रणाली का आधार बनता है, लेकिन यह पूर्ण बलिदान होना चाहिए, निर्दोष और पाप रहित। मानव जाति ने रिश्तेदार छुराने वाले के लिए 4000 साल इंतजार किया था। एक तीसरा पक्ष जो क रिश्तेदार होने के लिए योग्य हो सकता है और ख पूरी कीमत चुकाने का साधन रखता हो। कोई भी जानवर कभी भी किसी इंसान का रिश्तेदार नहीं हो सकता है ना? इसीलिए जबकि एक जानवर प्रायश्चित कर सकता है और परमेश्वर के क्रोध को अस्थाई रूप से रोक सकता है, एक जानवर कभी भी किसी इंसान का रिश्तेदार नहीं हो सकता है। और फिर भी कौन सा इंसान 100% पाप मुक्त था? स्वभाव से और कर्म से यीशु एकमात्र मुक्तिदाता था जिसके पास हमारे रिश्तेदार मुक्तिदाता होने की योग्यता, साधन और इच्छा थी। हम अगले सप्ताह इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे।